راما ہرے راما 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 ہرے ہرے. بلرام پورنیما کے مہان اتسو پہ آپ سب بھکتوں کا ہاردک سواگت ہے. ہری ہری بول. اور ہمارا پرم سواگت ہے کہ ہمارے بیچ میں اپستھت ہیں بلرام کتھا کے لیے پرم پوجنیے بھکتی آشرم ویشنو سوامی مہاراج. ہری ہری بول. اور ہم سبھی بھکتوں کا سواگت کرتے ہیں جو دلی این سی آر مندر سے آئے ہیں. وشیش کر ہم سواگت کریں گے ہز گریس موہن روپا پربھو جی کا. پربھو جی سے وشیش نویدن کیا, پربھو جی یہاں بیچ میں ہمارے اپستھت ہوئے. اور ساتھ میں سبھی بھکتوں کا جو دلی این سی آر کے الگ مندروں سے آئے ہیں, اس چوک کیلاش سے, گڑگاؤں سے, روہنی سے اور دوارکا مندر سے, اور کافی بھکت ابھی راستے میں ہوں گے, ان کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں. اور آپ سب سے نویدن ہے کہ مہاراج جی پچھلے دو دنوں سے بلرام کتھا کر رہے ہیں, آج انتم دن ہے, بلرام جی کا اب پرکٹیہ دیوس بھی ہے, تو مہاراج کے مکھاربند سے بلرام کتھا کا پورا لابھ اٹھانے کا پریاس کریں. اپنے اسمارٹ فونز کو سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ رکھیں. مہاراج کی کتھا چلے گی لگ بھگ 9:30 بجے تک, اس کے بعد پھر 10:30 بجے ابھیشیک ہوگا, اور اس کے بعد بھوگ آرتی اور پھر سب کے لیے پرشاد. تو کرپیا کر کے دھیرے بنائے رکھیے اور بڑے اتساہ سے اس بلرام پورنیما مہوتسو کو ہم منائیں گے. ہرے کرشنا.
ہرے کرشنا. ہمیشہ آپ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. آج ایسے ہم لوگ کے لیے تو بلرام جینتی ہے. پورے بھارت ورش میں سوادھینتا دیوس بھی اور رکھیا بندھن بھی, ہمارے لیے تو 3 تہوار ہے. لگ بھگ 19 سال پہلے 15 اگست کو ہی رکھیا بندھن ہوا تھا, ابھی 19 سال کے بعد سیکنڈ ٹائم اس سال بھی ہے. یہ 2019 ہے نا, 2000 ہوا تھا. ٹھیک ہے, ایک بھجن گاتے ہیں. جے رادھے جے کرشنا جے ورنداون. جے رادھے جے کرشنا جے برنداون. شری گووند گوپی ناتھ مدن موہ. شری جے رادھے جے کرشنا جے ورنداون. شری گووند گوپی ناتھ مدن موہن. شیام کنڈ رادھا کنڈ گیری گووردھن. شیام کنڈ کالیندی جمنا جیا جیا مہابن. کالیندی جم جیا رادھے جیا کرشنا جیا ورنداون. شری گووند گوپی ناتھ مدن موہن. کیسی گھاٹ ونسی بٹ द्वादश कानन केसी घाट जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन जहाँ सब जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृष जय पूर्णमासी जय आवीर नगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जन जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण जय द्विज भक्ति ते जहारा पाइला गोविंद चरण भक्ति ते जहारा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंडल जय जय राधे श्याम श्री रास जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय हाँ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय ज्वल रस सर्व रस सार जय जय परकिया भावे जहा ब्रजते प्रचार परकिया जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जाह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण श्री जाह्नवा दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन बासी जत जन जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरे कृष्णा। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी प्रभु जी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं। अभी और भी भक्त आने वाले हैं, कृपया करके सभी प्रभु जी लोग आगे आ जाइए। आगे स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, यहाँ से भी आगे आ सकते हैं। और माता जी लोग अगर पीछे स्पेस है तो माता जी से निवेदन करेंगे थोड़ा थोड़ा पीछे घिस जाइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी को हैप्पी बलराम पूर्णिमा। आज हम सब यहाँ इतनी संख्या में एकत्रित हैं, ये राधा राधिका रमण मंदिर में श्री कृष्ण बलराम के श्री चरण में श्री बलराम जी के शुभ आविर्भाव तिथि को मनाने के लिए। शायद पूरी दिल्ली NCR में, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में एक ही मंदिर है जिसमें श्री बलराम जी हैं, है ना? नहीं और कहीं है क्या? यस। और बलराम जी जब हैं उनको अगर समुचित, ये देखिए जन्माष्टमी सभी बड़ी आयोजन करके भव्य रूप से करते हैं, करना होगा। बलराम जी एक बार आए थे हस्तिनापुर में और उनको समुचित सम्मान नहीं मिला तो उखाड़ कर फेंक देना था उनको। ऐसा ना करे इसलिए करना पड़ेगा भैया। धमकी देते हैं भाई। तो श्री बलराम जी जो कि भगवान के द्वितीय विग्रह है, आदि गुरु है, गुरुजन के दो मुख्य कर्म बलराम जी करते हैं। एक तो भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं और कृष्ण के बारे में हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 24 नंबर श्लोक, उसके आधार पर कुछ बलराम के चर्चा करेंगे। वासुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। वासुदेव कलानंत सहस्र वदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया वासुदेव कलानन्तः सहस्र वदनः स्वराट अग्रतो भावितो देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। ओके, एक अधिकारी बोलेंगे एक अधिकारिणी बोलेंगे, बस समय का भाव है। शब्दार्थ वासुदेव कला अनंत, भगवान कृष्ण का अंश जो अनंत देव या संकर्षण है, भगवान का सर्वव्यापक अवतार है, सहस्र वदना हजारों मुख वाला, स्वराट पूर्णतया स्वतंत्र, अग्रतः पहले, भवितः प्रकट होगा, देवः भगवान, हरे कृष्ण का प्रिय चिकित्सया आनंद विधान करने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, कृष्ण का सबसे पहला स्वरूप, अग्रणी स्वरूप श्री संकर्षण है, जो अनंत कहलाता है। वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व यह आदि संकर्षण कृष्ण को दिव्य लीला में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। तात्पर्य, श्री बलदेव साक्षात भगवान है, वे श्रेष्ठता में ईश्वर के ही समान है, फिर भी जहां कहीं कृष्ण प्रकट होते हैं, श्री बलदेव उनके भाई के रूप में, कभी बड़े भाई के रूप में तो कभी छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं। जब कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो उनके सारे स्वांस तथा अन्य अवतार भी उन्हीं के साथ प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। इस बार श्री बलदेव कृष्ण से पहले उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे। ओम अज्ञानंतमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमों विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसे आपको विदित है कि विगत दो दिन से ही बलराम लिखिए, बलराम के दिव्य लीलाओं में कुछ, उनके कर्म का कुछ चर्चा कर रहे थे, आज उनके जन्म प्रकरण का चर्चा करेंगे कि आज उनके जन्मदिन है। तो सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को कृष्ण लीला के बारे में सुनाने जा रहे थे, क्योंकि परीक्षित महाराज बड़े आकुल होकर के कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उनको अनुरोध किए। बोले मैं मर रहा था, संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कुरुवंश पांडवंश के एकमात्र दयाद बीज रूपी संतान में मर रहा था, द्रोणी अस्त्र के द्वारा, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा जिसने मुझे बचाया, जिसने हमने वंश को बना रखा, वंश के कुल रक्षा किया, उनके बारे में मुझे बताइए। श्री बलराम जी की, श्री बलराम जी सुनने के लिए आ गए। अब उनके बारे में परीक्षित महाराज सुनने के लिए बड़े व्याकुल हैं, जो हमारे वंश के धरोहर है, जो मुझे मेरा रक्षा करता है, मैं मर तो गया था, मेरे माँ के गर्भ से मुझे जो जीवन दान दिया, पुनर्जीवित किया, उनके बारे में कृपा करके बताइए। तो कृष्ण लीला प्रसंग वर्णन करते करते कृष्ण के आने से पहले से बलराम आते हैं, तो बलराम का वर्णन तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले परीक्षित महाराज एक प्रश्न भी पूछे थे सुखदेव जी को, बोले गुरुदेव आपने मुझे जो वंश नवम अध्याय में वंश वर्णन सुनाए, इसमें वसुदेव की वंश के वंशावली में आपने बोले वसुदेव की एक पत्नी है रोहिणी, जिनके गर्भ से उनके संकर्षण आदि सात पुत्र हुए, संकर्षण बड़देव को लेकर के गद आदि, सारण आदि सात पुत्र हुए, और वसुदेव के और एक पत्नी देवकी के गर्भ में भी सात पुत्र हुए थे, एक फिर आठवां पुत्र श्रीहरि आए और एक बेटी हुई थी उनके सुभद्रा करके, दोनों ही सुना दी। और श्री बलदेव को रोहिणी के पुत्र के रूप में गिनाए थे और देवकी के पुत्र रूप में गिनाए। हम लोग तो प्रश्न नहीं पूछे होते हुड़बक, लेकिन परीक्षित महाराज जैसे स्मार्ट है तुरंत पूछे। बोले हे सुखदेव जी, ये कैसे संभव हो सकता है कि एक शरीर में रह करके दो माओ के गर्भ से जन्म हो सकते है? ये कैसे संभव हो सकता है ना? नहीं भाई, एक मां जुड़वा संतान तो जन्म दे सकता है, एक मां के गर्भ से दो संतान एक साथ में हो सकते हैं, लेकिन एक संतान और दो मां, हाउ कैन इट पॉसिबल? रोहिण्या स्तनया प्रोक्ता राम संकर्षणा त्वया देवकी गर्भ संबंध कुतो देहांतरंग बिना। अभी देह तो बदले ही नहीं, एक ही देह में रोहिणी की बेटा भी और बस देवकी के बेटा भी। ये तो भाई आजकल मेडिकल साइंस कितने ऊपर को चले गए, लेकिन ये तो समझ भी नहीं पाएंगे, करना तो दूर की बात है। दो मां के गर्भ से एक बालक अभी है विद्यमान, एक ही शरीर में दो मां है। अरे यद्यपि परीक्षित महाराज भगवान की अचिंत्य अनंत शक्ति के परिचित थे, वो जानते थे, और वो जानते थे कि भगवान बलराम साक्षात परमेश्वर कृष्ण ही है, उनसे कुछ कमी नहीं है, इसलिए यहां स्वराट शब्द से ही सूचित किया जाता है। और अनंत शब्द में देश काल आदि से जिनको कोई सीमा से बंधन नहीं किया जा सकता, ऐसे अनंत और स्वराट मतलब साक्षात श्री भगवान है, और भगवान के शक्ति उनमें नहीं थे, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए दो माह से क्या, 10-20 माह से भी एक साथ प्रकट होना कौन सी बड़ी बात नहीं है, है ना? उनके लिए कोई आश्चर्य कुछ होता ही नहीं उनके लिए, तो वो तो हो सकता है, लेकिन परीक्षित महाराज ये जानना चाहते हैं कि श्री बलराम स्वराट होते हुए, पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर होते हुए, वो जानबूझ करके पहले देवकी के गर्भ में आए, फिर वहां से ट्रांसफर होकर रोहिणी गर्भ आए, उनके स्वच्छा से ईसा किए, दो मां को स्वीकार किए, यहां उसके पीछे और कोई रहस्य है कि भगवान ने बोले उनको ऐसा करने के लिए? कि जरूर अगर बलराम जी ने अपने स्वच्छा से किए तो उनके कोई निश्चित भक्ति का परिपाटी, सेवा की परिपाटी होगा, कोई अचिंत्य सेवा की वासना होगा उनके मन में, और जब भगवान ने बोले तो भक्त वात्सल्या की, भगवान ने बोले तुम्हें ऐसा करो, ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या है क्यों ऐसा किए? बलराम के जन्म रहस्य का प्रश्न वो पहले ही पूछ दिए थे। अब उनको जेल में डाल दिया वसुदेव देवकी को, और क्रम अनुसार एक के बाद एक उनके पुत्र को मारते गया कंस, छह पुत्र को तो मार चुका था। माता देवकी का छह संतान जेल में, एक तो आउटसाइड थी जेल हुआ था, घर में हुआ था, बाकी पांच जेल में हुए थे, तो उनको कंस ड्यू टाइम में जाकर मारा था। तो कंस को पक्का पता था, कैलेंडर में डेट एक्सपीरियंस हो गया था उनका, ठीक इस समय होगा, ऐसा तो होने वाला है, वो भी वेट कर रहा था। अभी छह गर्भ होने के बाद सातवां बार माता देवकी ने गर्भवती हुई, कंस को क्योंकि फाइनल मैच अभी आने वाला है, सेमीफाइनल है ये, तो इसलिए वो ज्यादा सतर्क हो गया, थोड़ा सिक्योरिटी और बढ़ा दिया, और होशियार हो गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि इस बार की जो सातवां गर्भ हुआ कुछ विशेष था, ये जो बाकी पहले के देवकी मां के गर्भ में जो आ रहे थे वो ऐसा नहीं था, ये सातवां गर्भ विशेष था। ना क्या, ना ये जो सातवां गर्भ में जो आए वो साक्षात भगवत अंश अनंत देव आए, संकर्षण आए, ये कोई दूसरे कोई थे नहीं, ये अनंत जी आए सेवंथ में, साक्षात वासुदेव के कला अनंत सहस्र वदन स्वराट। वासुदेव के कला कहने का मतलब है साक्षात वासुदेव उनके अंश हुई हैं, अनंत मतलब जिनका कोई सीमा नहीं है, कोई देश में कोई काल में सीमित नहीं हो सकते हैं, सबसे परे, देश काल आदि सीमा से परे। सहस्र वदन, जो भगवान के गुणगान के लिए हजारों मुख भी कमी पड़ता है, हजारों मुख लेकर के अनंत काल तक भगवत गुणगान करते रहते हैं भगवान के भक्त चुड़ामणि श्री बलराम, भगवान के गुणगान में सबसे आगे हैं। स्वराट, प्रभुपाद जी कहते हैं जो पूर्ण स्वतंत्र, कंप्लीट इंडिपेंडेंट, कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र, भगवान जैसे स्वराट है। प्रथम स्कंद के भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान को स्वराट कहा गया, यहां बलराम जी को वही स्वराट कहा, क्योंकि वही तो है। तहारा द्वितीय देह श्री बलराम, और वही स्वराट है। लेकिन स्वराट का और भी एक अर्थ, हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि स्वराट का असली अर्थ है कि जो स्वजन के साथ हमेशा रहने वाला, स्वराज तिवार, आपने स्वजन किए ना, अपना स्वजन तो केवल हरि है, श्री कृष्ण ही जिनके एकमात्र स्वजन है, वो कृष्ण को छोड़ करके कभी भी अलग नहीं जो हो रहे हैं, वो है स्वराट। नेवर एवर, किसी भी लीला में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में जो श्री कृष्ण को छोड़ करके अलग नहीं हो सकते हैं, केवल आपने स्वजन कृष्ण को ही माने हैं, और उनको ही सेवा जिनका एकमात्र धर्म है, उनको ही प्रसन्न करना, हरे प्रिय चिकित्सया, केवल यही एकमात्र उनका प्रोजेक्ट है, एकमात्र उनका इच्छा है, हरि के प्रिय करना और हमेशा उनके साथ रहना, उनको स्वजन बना के, स्वजन बन करके रहना, इनको कहा जाता है स्वराट। ये स्वराट है, हरि के अलावा कभी दोबारा हो नहीं, चाहे जैसे भी किसी प्रकार से आने पड़े। अग्रतो भविता देव, बोले अभी आगे आते हैं, कभी कभी बाद में आते थे, अभी पहले आ रहे हैं, वही देव है हरि, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय करने के लिए वो इस बार आगे आ रहे हैं, ये कह रहे हैं। क्योंकि ये सातवां गर्भ, ये साक्षात भगवान आ रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे हैं, तो फिर आठवां गर्भ में तो भगवान आएंगे ना, वो तो आएंगे। ये भगवान, भगवान तो है फिर क्या ना, ये भगवान सेवक भगवान है। वो जो भगवान आठवां में आएंगे वो सेव्य भगवान होंगे, वो सेवक भगवान के रूप में अभी आ रहे हैं। अनंत देव साक्षात भगवत अंश क्यों आते हैं, क्या आवश्यकता है? बोले तो सबको पता है, कभी कहीं भी वीआईपी प्रोग्राम होता है, कोई मिनिस्टर आदि के आने होते हैं, तो प्रोग्राम बनते ही म्युनिसिपैलिटी, पुलिस स्टेशन और आदि आदि सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, सफाई वफाई करना ये सब करना हो जाते हैं। जहां प्रोग्राम करेंगे वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं, मंच आदि बनाना, गटफट सजाना, क्या गिफ्ट देंगे, क्या करेंगे ये सब। और जिस दिन प्रोग्राम होगा, जिस दिन आएंगे, तो आने से पहले एक विजिलेंस चेकिंग पार्टी आता ना, वो आना पड़ेगा। क्यों? कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, देखने के लिए, फाइनल क्लैरिफिकेशन, एवरीथिंग इज ओके नाउ यू कैन कम आप आ सकते। ये फाइनल चेकिंग के लिए जो 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 मिनिस्टर उनके सारे प्रकार के आवश्यकता जो जानते हैं, वो क्या क्या चाहते हैं, क्या आवश्यकता है, जो उनसे पूरा अभिज्ञ वही आएगा। नहीं तो कोई कम रहा, तुझे पता नहीं सुखी भेज दिया, उनको पता नहीं मुझे ये चाहिए था करके, है ना? नहीं तो इसलिए जो भगवान के वास्तविक स्वजन है, जो भगवान के मनस्थिति को जानते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, किसी प्रकार उनके बेड कैसा होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, जैसे हम लोग के लिए आसन लगाने के व्याख्यान वाला आसन लगाते हैं, ऐसे भगवान के आसन, सज्जा, छत्र, पादुका आदि आदि जो जैसे भगवान की इच्छा के अनुसार विधिवत होना चाहिए, जो उनको ठीक ठीक से जानते हैं, उनको आना पड़ेगा कि सब देखा ठीक नहीं, चेंज करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बताएं, सार आ रहे हैं। तो इसीलिए ये फाइनल ओके करने के लिए भगवान के साक्षात कला श्री अनंत देव, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करे कृष्ण रसेवना, हर प्रकार से कृष्ण के सेवना करते हैं, मूल रूप में वही हैं, संकर्षण है, और उनका केवल कार्य है भगवान की सेवा करना अनेक अनेक प्रकार। तो उन्होंने आते हैं फाइनल चेकिंग में, वो आए। उसके पहले जो छह गर्भ हो गए थे वो तो प्यूरिफिकेशन था, माता देवकी के गर्भ में ये जो षडगर्भ थे उनको अलग अलग प्रकार में कहा गया। वो षडगर्भ कहे जो देवकी माँ के, देवकी भगवान के माँ है, भगवान के माता पिता, ये तो सब शुद्ध सत्व के विकार है, ये तो कोई साधारण जीव तो हो ही नहीं सकते, फिर उनमें से ये राक्षस कैसे आ गए षडगर्भासुर? बोले वो आश्चर्य क्या है, भगवान में सब कुछ हो सकता है, बाकी किसी में कुछ होना कुछ, अरे कैसे होगा, लेकिन भगवान में इम्पॉसिबल शब्द तो होता ही नहीं, कुछ कुछ भी कर सकते हैं, सारे आश्चर्य जीवन में हो सकता है, तो इसे कुछ बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात है, जो षडगर्भ थे वो कोई साधारण थे नहीं, वो मरीचि के पुत्र थे, सांप के कारण ऐसे ऐसे आए थे, लेकिन मरीचि ब्रह्मा के मानस पुत्र है, मन है, ये सब मन के विकार है, मानस पुत्र है, हमारे मन के विकार है, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आदि षड विकार है, षड रिपु मन के विकार है, जब तक वो शत्रु रहेंगे तो भगवान कैसे आएंगे, भगवान की बात नहीं आएगा। तो हृदय बिल्कुल साफ होना चाहिए काम, क्रोध, लोभ आदि विकार से। ये जो षट विकार है, षट रिपु है, उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हृदय की जो मन की विकार छह हैं, उनको निकालने के लिए हमको सतर्क होना पड़ेगा, हम सभी को सतर्क होना पड़ेगा। ये सब भक्त के हृदय में बैठे हैं, ऐसा बात नहीं, भक्ति तो कर दिए शुरू, लेकिन सब गुणीभूता भक्ति, पैशन, इग्नोरेंस भरे पड़े हैं, उनके साथ ही करना पड़ता है, हम सभी हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अब दिखाई पड़ता है क्या भरा हुआ है, क्या रस है उसमें, बाप रे बाप, अब भूत प्रेत पिशाच भाग जाए कि आ जाए क्या पता। तो ये सब गुणीभूता है, ये गुण कैसे भागेंगे भक्त के हृदय में, जो शुद्ध भक्ति करने के लिए ये गुण सब जाएगा तब तो शुद्ध होगा, तब तो जाएगा हरि भजन करेगा, हरि की सेवा करेगा। ये हरि सेवा करने के लिए जब भक्त तैयार होता है, भजन उन्मुखी होता है, भजन करने के लिए लगता है सब कुछ करके, तभी इतने आसान से गुण नहीं निकलते हैं। इस गुण को निकाल, लेकिन ये शास्त्र में ये भी कहा गया, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, बिना बल में उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बल क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ है क्या? नहीं नहीं नहीं, शारीरिक शक्ति से उनकी तो सवाल ही नहीं उठता। ये जिम खाना जा करके कुछ प्रोटीन खाकर कुछ नहीं हो सकता। ये शक्ति साक्षात आध्यात्मिक शक्ति है, इसीलिए तो प्रभु के नाम बड़ नाम है। उनका नाम बड़ प्लस राम, ये दोनों शब्द से समन्वित है। बल मतलब आध्यात्मिक बल, जो आध्यात्मिक बल से बलवान होकर मैं भगवान की सेवा करने के समर्थ हो सकते हैं, वही बल की मेन सोर्स सप्लायर वही है, उन्हीं से सप्लाई होगा बल। और राम इन बल को प्राप्त करके अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ जाए तो वास्तविक पूर्ण आनंद को हम आस्वादन कर पाते हैं। इस पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए पूर्णानंद करते राम रमयती, उस आनंद में रमण करने के लिए भी उनकी कृपा की आवश्यकता है। ये दोनों काम उनके हाथ में, इसलिए बल और राम इस आध्यात्मिक बल भी देते हैं और पूर्ण आनंद में रमण करने के लिए आपको सहायता भी करते हैं। तो इसलिए तो बलराम है, तो इसलिए बलराम की कृपा का आवश्यकता है। तो अभी देवी की माता यद्यपि कोई जीवतत्व नहीं थी, भगवान की मां है शुद्ध सत्व स्वरूप, लेकिन फिर भी ये गुण वहां तक पहुंच जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। रजगुण तमगुण कहां नहीं छोड़ते हैं। भगवान बलराम ने अपनी ब्रज की लीला में दो असुर को मारे, दो असुर संहार किए। कोई कहते हैं वही तो पाषाण और इग्नोरांस से धनुकर्ण प्रलंब, वही तम और रजगुण के प्रतीक है, लेकिन वास्तविक धनुक था क्या था, वो गधा था। आजकल भी कोई क्लास में ठीक से पढ़ता नहीं तो टीचर उसमें क्या बोलता है, गधा मूर्ख। और ये गधा था। धनुक भी गधा, एक्चुअली मांसाहारी नहीं है, गधा घास फूस खाता है। लेकिन ये धेनुक घास फूस नहीं खाता था, ये असुर था, गर्धवासुर था। गधे तो रूप था लेकिन कभी घास नहीं खाता था, कि दाना है वो तो मांसाहार करता था, गधे के रूप में असुर। ये गर्धवासुर, ये प्रत्येक मनुष्य के ये गधापन, ये देहाशक्ति देहाध्यास। अगर हम अपने शरीर को और अपने शरीर की संबंधी को, शरीर के नाम जैसे प्रतिष्ठा को सब कुछ मानते हैं, पूरे शरीर की शक्ति सारे शक्ति सारे सामर्थ्य को उन्हीं में लगा देते हैं, तो पूरी तरह से हम गधे हैं। यही गर्धवत्व मनुष्यत्व को खा जाता है, मनुष्यत्व भी प्रकट नहीं हो पाता। इस गधेपन को हटाने के लिए हमारे हृदय से सकल निखिल जीवाचार्य बलराम की कृपा की आवश्यकता है। उनकी कृपा से गधेपन हटेगा, हम कुछ करेंगे। तो इसी से धनुकासुर को पहले ओपनिंग किए, ये गधेपन को हटाए। ये तो हट गया, देहाध्यास तो हट गया, मिट गया, लेकिन नाम जस प्रतिष्ठा लोकेष्णा इतने लंबा है, प्रलंब है, प्रकृष्ट लंबा, इतने हद तक उनका प्रवेश है। साक्षात भगवान के सखा, गोप सखा के अंदर डुप्लीकेट गोप सखा बन करके चला गया। एक तो वृंदावन के अंदर एंट्री मिला, और किस रूप में गया, गोप सखा बन करके गया प्रलंब। हाँ, मतलब यहां तक भी पहुंच जाता है। साधक के सबसे उच्च स्थिति सर्वोच्च स्थिति में भी ये लोकेष्णा नाम जस की प्रतिष्ठा उसको घायल कर देता है। इसी उच्चतम स्थिति में जाकर भी पतित हो जाता है, इसी के कारण, क्योंकि वो दिखता ही नहीं, वो सूक्ष्म है, इतने सटल है ये जस की इच्छा, इसीलिए तो प्रलंब है, इतने डुप्लीकेट, बिल्कुल गोप सखा बन कर गया। अब बताओ, उनके ग्रुप में घुस गया, वो खेल भी खेलने लगा, लेकिन खेल खेलते खेलते जब बलराम को कंधे में उठाएगा तब उनका चूर चूर होगा, है ना? नहीं तो इस प्रकार बलराम भी इस इतने सुखमात ही सुखम, इतने दूर तक जिसका पहुंचे प्रलंब रूपी लोकेष्णा नाम जस प्रतिष्ठा की ये आशा को उसको भी हृदय से साफ करते मिटाते श्री बलराम, इनको मिटा दिए, इनको मिटा करके हमको कृष्ण सेवा के लिए सहायता करते हैं, समर्थ करवाते हैं। तो इसलिए श्री देवकी माँ जब श्री भगवान के माँ होना चाहती थी, भगवान उनके गर्भ में आएंगे, लेकिन ये हृदय के विकार, जो मन के विकार है, काम क्रोध षड रिपु, ये षड विकार वो कैसे जाएंगे? ये तो हृदय के विकार, उसको ऐसे छुड़ा नहीं जा सकता, कोई बाहर से नहीं कि हाई डिटर्जेंट पाउडर लेके साफ कर दें, किसे निकाल फेंके, नहीं 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 नहीं, उन हृदय के विकार को निकालने के लिए हमको इतने समस्त साधक भक्त को इतने सतर्क होना चाहिए, इतने डरना चाहिए, तब जाकर ये मिटेगा भय के कारण, भय से मिटता ये विकार। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी कहते हैं कि मेरे अनुजाई जितने हैं दे आर वेरी गुड, सब खूब जप करते हैं, जहां तहां हरे कृष्ण करके डिक्लेयर हो गया सारे सोसाइटी में, इतने करते हैं, लेकिन दे आर नॉट फियरिंग इनफ टू माया, जितने माया को डरना चाहिए इतना भय नहीं उनका अंदर, निर्भय हो जाते हैं। यद्यपि भक्त का गुण है अभय, निर्भय हो जाता है, लेकिन है अभय तो होगा, लेकिन फिर भी भय रहना चाहिए। क्या ये जो षड विकार हमारे अंदर है इसको निकालने के लिए भय ही सहायता करेगा हमारा, भय ही उसको मारेगा निकालेगा। इसलिए श्री मामा कंस साक्षात भय की अवतार है, पर्सनिफिकेशन ऑफ भय, फियर पर्सनिफाइड कंस है। तो कंस ही भय के रूप में आकर के इस शुद्ध भक्त भक्ति देवकी के हृदय से इस षड विकार काम क्रोध को भय के कारण नाश किया, मारा उसको। उससे मर जाने के बाद में अभी फुली क्लियर हो गया, बाकी सब रेडी है कि नहीं, फाइनल चेकिंग के लिए श्री भगवत अंश साक्षात संकर्षण अनंत देव पधारते हैं, आ करके भगवान के स्थान, उनके सज्जा, उनके आसन, उनके जो जो आवश्यकता है, एवरीथिंग एवरीथिंग परफेक्टली अरेंजमेंट करने के लिए से आते हैं अनंत। लेकिन ठीक है, आए, कर दिए इंस्पेक्शन, ओके करके ग्रीन लाइट दे दो, अभी सारा आए चले, लेकिन गड़बड़ी यही हुआ कि आए तो आए, जाने के लिए मन नहीं करते, पता नहीं। अरे भैया, श्री बलराम के नित्य मां श्री रोहिणी है, रोहिणी नंदन, हमेशा उनकी नित्य जननी, अनंत जननी श्री रोहिणी है, लेकिन पता नहीं। अब चेकिंग करने के लिए आए, हरे प्रिय चिकित्सया, हरि के प्रिय करने की इच्छा से आए, वहां देवकी की मां के गर्भ से श्री हमारे प्रभु के सार के सब व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं, अरे ठीक ठाक कर लिया, अभी चला जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहे, वो यहाँ के रह गए। अरे भाई, आपको चेकिंग करने में क्या टाइम लगता है, करेक्शन फटाफट करो, जाओ, उनको आने का प्रोग्राम उनका फिक्स है, लेकिन आके जन नहीं जा रहे, आए सब ठीक ठाक तो किए और वही बैठे जा नहीं रहे। अब भगवान को माया देवी को बुलाना पड़ा, गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे, अब जाओ भाई साहब, यहां बैठ गए, लाइन क्लियर नहीं है, आउटडोर में मैं खड़ा हूं, आउटर में खड़ा हूं, लाइन क्लियर नहीं है, क्यों भाई साहब बैठे हैं हमारे सीट पर, हमारे सीट पर भैया भाई साहब बैठे हैं, उनको लाइन क्लियर कराओ यार, हम जाऊं, है ना? नहीं, मेरे सीट पर वो बैठे, तो इसी की तो पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज जी, क्या रहस्य है? बलराम जो हरे प्रिय चिकित्सया, हरि के प्रिय करने के जिनका एकमात्र प्रोजेक्ट है, एकमात्र थे हरि के प्रिय करना, वो क्या नहीं जानते थे कि हरि के प्रसन्नता होंगे, वो आ गए हैं, अभी उनको जल्दी आना है, मैं उनको रास्ता सीट खाली करूं, नहीं पता था क्या? अवश्य पता, ऐसे नहीं पता, अवश्य पता है। और ये भी ये रहक कहां रहे हैं, भगवान बोले तब निकलेंगे, ये भी इसके अंदर भी हरि के प्रिय ही निहित है। वो क्या प्रिय निहित है, बड़े रहस्य है। गोस्वामी गण तो उनके अंदर जाकर हृदय की बात निकाल करके बता सकते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। वो तो घुस जाते हैं उनके हार्ट के अंदर, वो बोल खोल कर बताते हैं, बोलते हैं उनमें ये रहस्य था। उनको भाई जब सार आ रहे हैं तो पहले आए चेकिंग चाकिए साइड दो, गाड़ी आ रहे हैं उनका, लेकिन नहीं नहीं जा रहे। कहते हैं कि माता देवकी के गर्भ में, सातवां गर्भ में 7 महीना तक टिके रहे। अरे भैया आपका 7 सेकंड का काम था, 7 महीने रहने का क्या काम था? हाँ? और रोहिणी मां गर्भवती होकर के गई ब्रज में, और वो गर्भ था मूढ़ गर्भ। लो साक्षात अनंत जननी गर्भवती हुई, वहां फल्स था, वहां फल्स गर्भवती होकर के गई। उसका पीछे भी रहस्य है, उसका पीछे भी रहस्य है। उनको फल्स गर्भवती करके भेजी और असली गर्भवदेव की मां के गर्भ में रही। क्यों? क्योंकि अब ये बात शाम को चर्चा करेंगे। अब ये बात बता देते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको अर्डर क्यों किया कि भाई देवी तुम माया तुम जाओ, क्योंकि भगवान को माया को भेजना था, ये बात शंकरषण को पता था। किस लिए भेजाना था? ये बलराम को काम का सेकंड आइटम बोले, तो साइड आइटम, असली बात बोले कि तू ब्रज में जाओ। माया के बोले गच्छ देव ब्रजंग भद्रे, और माया के ब्रज में जाने का ताकत तो है ही नहीं। माया देव ब्रज में चली जाए इतना उनका तो साहस नहीं है। वो चुप खड़ी रही, बोले सर आप बोल रहे हैं मुझे ब्रज में जाने के लिए, मुझे रास्ता ही नहीं पता, कौन सा गेट में एंट्री करूं, मुझे आला होगा? यहां तो सब आपके साक्षात स्वयं आपके ही परिकर गण सब हैं, वहां पर मैं कैसे जाऊं, कौन सा गेट में कैसे एंट्री करूं? तब भगवान में सेकंड लाइन में बोले देवी मैं तो बोल दिया जाने के लिए, लेकिन ये काम तो मुझे पता है तुम नहीं जा सकते, भाई साहब लेकर जाएंगे आपको, भाई साहब ले जाएंगे, क्योंकि वो तो है समर्थन, वो तो आप ही है ना, वो ले जाएंगे, इसलिए वो बैठे वेट करके, वो अभी बैठे हैं मेरे सीट पर बैठे हैं, कि उनको पता है कि मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि मुझे आना है ना। भगवान सचमुच देवकी नंदन नहीं है, वो जसोदा नंदन है। जसोदा मां के गर्भ से साक्षात द्विभुज कृष्ण जो हमारे नंद नंदन, वो नंद के वहां जसोदा के यहां प्रकट हुए। लेकिन कंस के जेल में फिर कौन प्रकट हुआ? बोले कंस के जेल में तो 400 हुए थे, आप तो सब पता है। पहले जब वसुदेव देवकी जिसको प्रार्थना की, किसको किए थे? वो चतुर्भुज थे, बाद में द्विभुज हुए। चतुर्भुज कैसे द्विभुज हुआ? वो द्विभुज नहीं हो सकते, द्विभुज चतुर्भुज हो सकते हैं, तत्व ऐसा है, 2 से 4 होता है, 4 फिर व्याग थोड़ी करता है ना, दूध से दही बन सकता, दही फिर दूध ना, नहीं हो सकता। तो फिर कैसे? बोले ओ वाई फ्लाइट आए थे, ओ नंद नंदन वहां प्रकट होकर वाई फ्लाइट आ गए, फटाफट आकर कंस के जेल में एंट्री कर गए। जैसे द्विभुज रूपी मूल कृष्ण आए, तो चतुर्भुज रूपी उनके सांस उनके अंदर मर्च हो गए। ये जो वाई फ्लाइट कौन, फ्लाइट कौन है? वही तो माया देवी है। भगवान को पहले बुकिंग करना था फ्लाइट, एडवांस बुकिंग किए, उनको पता था मुझे फ्लाइट में आना है, कहां से? गोकुल से कंस के जेल में आना है, और ये इतने टाइट शेड्यूल के अंदर केवल वही ला सकती है, तो लेकिन ब्रज में जाएंगे से फ्लाइट वहां से टेकअप कैसे करेगी? इसलिए ये सब को क्रिया को समुचित रूप से घटित करने के लिए भाई साहब ही करा पाएंगे। तो इसलिए भाई साहब बोले कि अब माया देवी जाएंगे, आप उनको लेकर जाना, नहीं तो कैसे घुस सकती है, ये काम कैसे कर सकते? तो इसलिए बलराम जी उनके ओके फाइनल चेकिंग करने के बाद भी देवी की माँ के गर्भ में अपेक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे, मैं फिर यहां से जाऊं उनको लेकर के, नहीं तो ब्रज प्रभु से कर ही नहीं सकती हो। तो इसीलिए फिर सेकंड आइटम में भगवान ने देवी के बोले देवी जाओ ब्रज में तो जाओ, जो गोप गोपी से अलंकृत है, लेकिन वो जब डाउट करके खड़ी रही, बोले तो नहीं पहले इधर जाओ भाई साहब के वहां जाओ, उनको लेकर के जाना, लेकिन ख्याल रखना वो मेरे भाई साहब हैं, बिल्कुल सतर्क से वो के गुस्सा ना हो जाए, तो बड़े केयरफुली उनको लेना और लेकर के उन्हें ट्रांसफर करना। और रोहिणी के गर्भ है, वो मूड गर्भ है, उनको इधर करके उनको इधर कर देना, उनको इधर कर देना। ये रहस्य है माया को लेकर बलराम जाते हैं। और फिर जाते ही तुरंत भगवान के आए द्विज रूप में, वहां आकर के चतुर्भुज मर्ज किया। अब वसुदेव तो प्रार्थना कर रहे थे बचाने के लिए, मैं उनको कहां लेकर छोड़ूं बचाऊं, अब लेकर जाएंगे, हेवी डार्क, मध्य रात्रि, अष्टमी रात्रि, भाद्र कृष्णाष्टमी, अष्टमी तिथि में अंधेरी रात, घनघोर बारिश, ऐसे ही इतने मिडनाइट में और इतने हेवी टाइट सिक्योरिटी, बारिश हो रहा है। अब वसुदेव जी तो बेड़ी कड़ी में बंद है जेल के अंदर, ना तो उनके पास लाइट है, टर्च लाइट है, कुछ भी नहीं है, ना छतरी है। अब साक्षात भगवान को लेकर कैसे जाएंगे? ठीक है, भगवान के सेवा के लिए मन में इच्छा करने से सारे बंधन टूट जाता है, खुल गया बंधन, वो यहां तक कि जड़ के वाड़ की ताला भी खुल गया, लेकिन ये लाइट और छतरी कहां से आएगा? बड़ा पिताजी भीग जाएंगे और शिशु भीग जाएंगे। वसुदेव जी तो वो चिंता ही नहीं, बारिश हो रहा है, अंधकार है, उनको कोई सुधि ही नहीं है, भैया मिड नाइट है, बारिश हो रहा है, जमुना जी इतने केयर्स, वो तो कृष्ण सेवा के लिए इतने लीन थे, वो लेकर चल पड़ना चाहते थे। लेकिन इन प्रकार के भक्तों की जिस इस प्रकार सेवा की सहायता करने के लिए बलराम तुरंत प्रकट होते हैं और साक्षात अनंत के रूप में। वसुदेव जी पता नहीं चला छत्र है, वो ऐसे छत्र है, सहस्र मणि संपन्न, सहस्र फणा, सहस्र मणिमंडित फणे, उनके हरेक मस्तक पर मणि जटित है। और मणि आप देखे ना, कोई आजकल भी जो माइंस में काम करते ना, माइंस इंजीनियर, उनको पता है वो लाइट हाथ में लेकर नहीं जा सकते, एक टोपी लगाते हैं, हेलमेट, उसी से लाइट फिट है, वो लाइट बिल्कुल फोकस लाइट क्लियर दिखाई पड़ेगा सारे। तो भगवान के हेडलाइट हेलमेट भी लगा हुआ है मणि, लाइट बिल्कुल स्पॉटलाइट फोकस लाइट है। तो वसुदेव जी को पता नहीं लाइट कहां से आ रहा है, इतने क्लियर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ओ क्योंकि लाइट मणि से आ रहा है और छतरी भी है, एक सिक्कर भी पानी का ना गिरे बिल्कुल। उन्हीं को देख करते जमुना जी भी डर गई, बोले जेठ आ रहे, अब मैं क्या उनको देखा, बाप रे बाप, ससुर साहब तो चलो उनके साथ कुछ कर सकता हूं, लेकिन जेठ है ऊपर में, भयानक शक्ति, वो भी सुधर गई। तो इसलिए भक्तों को भगवान की सेवा के हरेक प्रकार में सहायता करने के लिए जो बल आवश्यकता है, जो कुछ आवश्यकता है, तो सब कुछ सप्लाई श्री बलराम से प्राप्त होता है। इसलिए बलराम अब साक्षात संकर्षण अनंत हो करके अग्रे भविता देवो, यहां ब्रह्मा जी परीक्षित महाराज बताते हैं, सुखदेव जी अब ऐसे घटना था कि जब धरती देवी की जाकर के सारे देवताओं को बोला, ये सारे असुर दो रात में बढ़ गया, अब असुर लोग सब मिल करके, भाई गड़बड़ी, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रतिरक्षा विभाग, भगवान शंकर के हैं, वहां जाओ। शिव जी बोले भाई ये मैं नहीं कर सकता, हाँ मेरे डिपार्टमेंट है लेकिन इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, ठीक है मैनेजमेंट ब्रह्मा जी के पास जाओ कुछ करो, बोले मैं भी नहीं हाथ उठा दी। अब सब मिल करके बोले चलो मेंटेनेंस ऑफिसर विष्णु के पास चलते हैं, खीरे सागर में जाकर के खीरे साई विष्णु को पुरुष सूक्त में प्रार्थना किए, खूब प्रार्थना किए देवता लोग ने, खीरे साई विष्णु तो दर्शन तो नहीं दिए, फोन किए, केवल ब्रह्मा जी के पास फोन था और किसी के पास था नहीं, वो बटन वाला फोन था सर, स्मार्टफोन था नहीं इसलिए देख नहीं पाए, डिवोटी लोग बटन वाला फोन ही रखते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी भी पहले से रखे। तो उनको मैसेज आया फोन में, मैसेज के कि देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, बता दो सबको। तो ब्रह्मा जी उनके मैसेज फोन में पा करके वो डिक्लेयर किए देवताओं को, बोले अरे देवगण डोंट वरी, ब्रह्मा जी के आदेश कुछ हो गए, क्या बात है सर, अब देखो हर समय कुछ गड़बड़ होता है, तो प्रभु जी आते हैं, अनेक करके मत्स्य कुर्मा आदि अवतार लेकर के अवतरण लेते हैं और आकर के हमारी विपत्ति दूर तो करते हैं। इस बार भी उन्हें मैसेज आ गया, वो तो आने वाले हैं, लेकिन इस बार के बाद कुछ अनोखा है ना। क्या ना, हरेक बार जैसे मत्स्य कुर्मा आदि अवतार में आते थे, इस बार ऐसे नहीं आएंगे। क्यों बोले, हर बार मत्स्य कुर्मा आदि अवतार को मम्मी पापा बनाकर तो आते नहीं थे, ऐसे प्रकट हुए, अपना काम किए, प्रकट अवतार अंतर्धान ऐसे करके चले गए। लेकिन इसी बार कुछ विशेष रूप में आएंगे ना, क्या मम्मी पापा लेकर आएंगे। हाँ, हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी बोलते मेरी इस ब्रह्मांड में उन्होंने जन्म लीला करेंगे इस बार। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे इस ब्रह्मांड के नियम है, इस नियम के अनुसार राजी खुशी से उन माता पिता बना करके जन्म लीला करेंगे, इसलिए विशेषता है। हाँ, और विशेषता क्या है, वो तो आएंगे इसमें। और आप जानते हैं जैसे चंदन के वृक्ष मलय पर्वत में ही प्रकट होता है, तो भगवान भी और कहीं प्रकट नहीं होंगे, भारत वर्ष में कोई भक्त के घर में, भक्त वंश में प्रकट होते हैं। तो परम पवित्र भक्त जदवंश में और परम पवित्र श्रेष्ठ श्री भक्त वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, ये बात ही भगवान एडवांस बता दिए थे, भक्त ने सब डिटेल बता दिए। और बात ब्रह्मा जी ने बताकर कहते हैं देवताओं ने, हे देवगण, इस बात केवल यही अहो भाग्य नहीं, और भाग्य की बात है, जितने देव रमणिया है, देवियां हैं, उनका भी भाग्य की सीमा नहीं। बोले उन लोग भी जन्म लेना पड़ेगा, आप लोग तो सब जन्म होंगे ही भगवान की सेवा करने के लिए जदवंश में, उनको भी जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के प्रियाओं की सेवा करने के लिए उनको भी चांस मिलेगा। इस बार सबको सेवा करने के लिए, भगवान की साक्षात प्रियसियों के सेवक के सेविका बनने के लिए, दासी बनने के लिए इस बार चांस मिलेगा इसी ब्रह्मांड में, तो इसलिए तैयार हो जाओ फटाफट सब। तो लोग बोले इस बार और एक विशेषता है, बोले ठाकुर जी आने से पहले उनके साक्षात श्री द्वितीय विग्रह संकर्षण बलराम भी इस बार अग्रे भवितो देव, इस बार पहले आ रहे हैं। नहीं, बाकी होता तो बाद में आए थे, बोले इस बार पहले आ रहे हैं, इस बार पहले इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हर बार तो आते ही रहते हैं, जस्ट इसी अवतार के पहले राम अवतार में वो बाद में आए थे, छोटे भाई बनकर आए थे और उनको बड़े दुख हुआ। बोले कान पकड़े, बोले दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, ये छोटे भाई बनना बड़ा मिस्टेक है। उनको बड़ा दुख हुआ। बोले क्या दुख था छोटे भाई बन करके? बोले जब श्री राम अवतार में भगवान श्री राम ने पितृ आदेश पालन करके वनवास में चले, तो रामानुज श्री शंकरषण लक्ष्मण बड़े भाई के अनुगमन करते हुए उनके पीछे पीछे वन में चले। वनवास के समय में जब उनके पीछे पीछे चल रहे थे श्री शंकरषण ने लक्ष्मण रूप में, वो जो कंकण पत्थर वन की रास्ता, चप्पल भी नहीं पहने थे उन्होंने जब जा रहे थे, उनको जब कष्ट हो रहा था, उनके कष्ट तो कुछ नहीं था, वो मन में सोच रहे थे मेरे भाई साहब प्रभु राम को पैर में कितने कष्ट होता होगा, इसको चिंतन करके बोले मैं क्या करूं, बड़े भाई ये आगे ही चलते हैं, कितने उनको तकलीफ होता होगा, और मैं क्यों नहीं बड़े भाई बन गया। वही मन में दुख हुआ, अगर मैं इस बार इसलिए बड़े भाई हो जाता तब कैकेयी माता तो भरत को राजा बनाना चाहता था, जो अमर वंश परंपरा जो बड़े भाई है वही राजा का सीट मानता है, तो मुझे ही वनवास देता, मैं बड़े भाई होता राम को थोड़ी बोलता, मुझे वनवास, मैं वनवास चलता, मैं इस कष्ट स्वीकार करता, मेरे प्रभु राम को कष्ट स्वीकार नहीं करना पड़ता, लेकिन बड़े भाई बनकर के उनके कष्ट स्वीकार करना पड़ता, मैं क्यों नहीं बड़े भाई बन गया। ये मन का मन में बड़ा खेद हुआ, बड़े दुख हुआ, बड़ा मिस्टेक किया, मैं बड़ा बनकर आता मेरे प्रभु को कष्ट ना होता, मैं जंगल में चला जाता, तो इसलिए बोले कि इसी गड़बड़ी और नहीं करूंगा। इसलिए एक बलराम के सहस्र नाम में, बलराम जी के और एक नाम भी है शास्त्र में, क्या है, पूर्व भक्ति खेदा अच्युताग्रज, कि पूर्व काल में भक्ति में खेद आया था उनके मन में, बड़े खेद उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस बार अच्युत के अग्रज बन करके आए। बोले और नहीं बनूंगा, मिस्टेक नहीं करूंगा, इसमें बड़े भाई बनकर रहूंगा, जो कुछ कष्ट मुझे सहन करना पड़ेगा मुझे भी कष्ट। लेकिन बड़े भाई बनकर आकर भी देखें कि ये भी गड़बड़ है, ये कुछ भी बड़े बड़े बने छोटे बने वो काम नहीं बनने देता। यद्यपि उन्होंने स्वराट शब्द का, सारे आचार्य बोलते हैं कि जो उनके स्वजन है उनमें साथ रमण करते हैं। हम देखते हैं कृष्ण लीला के आदि से अंत तक बलराम साथ में थे। हाँ, कोई लीला ऐसे नहीं जो बलराम नाथ होंगे उनके साथ। वो फोर व्हीलर से टू व्हीलर सब लीला में, फोर व्हीलर मतलब घुटरू वन से लेकर के, हाँ, जब भगवान रोहिणी नंदन के रूप में प्रकट हुए ब्रज में, प्रकट तो हुए, प्रकट होने के बाद भी बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ ब्रज में, शाम को चर्चा करेंगे। उस फेस्टिवल तो हुआ, सब कुछ हुआ, सहस्र सहस्र गोदान किए नंद बाबा ने, और भारी फेस्टिवल हुआ। यद्यपि रोहिणी माता बोलती थी नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसे उत्सव मत करो, ये सब होना नहीं चाहिए, पति ने मना किए हैं कंस सीरियस, लेकिन कौन कहे, इतने बलराम के आनंद जो साक्षात राम है, सबको आनंद देने वाले, सबको आनंदित हुए, सब नाचे गाए, खूब बड़े बूढ़े तक सब नाचे गाए आनंदित हुए। अब वो आनंद के बाद में महानिरानंद हो गया, इतने सुंदर बेटा जन्म हुआ पूर्णिमा के दिन दोपहर में, लेकिन घुंगा बहरा पता नहीं क्या, कुछ बोलता भी नहीं, हंसता भी नहीं, हाथ पर भी नहीं उछालता, पल भर पड़ा रहता है, हाथ पर भी नहीं उछालता, कुछ बोलता नहीं, रोता भी नहीं, ना रोता ना हंसता, कुछ करता कुछ भी नहीं करता। क्या जड़ हुआ यार, इतने सुंदर रूप है, हे गठिला सब चकाचक है, लेकिन घुंगे सुनता भी नहीं, पता नहीं, सुनने से तो बोलता भी कुछ, कुछ नहीं करते, जड़ की तरह पड़ा रहा। कई दिनों तक माता रोहिणी तो बोलते पता नहीं देवी किन्नी है, मुझे राण नियम दिला करके गर्भवती कराया कि पति का वंश नाश हो रहा है, दीजी आपको वंश रक्षा करना होगा। उनके कहने पर मैं गर्भ धारण की, लेकिन स्वामी के वंश रक्षा करने के मेरे गर्भ में किया आ गया, ये 14 महीना तो निकल नहीं रहा था, इतने लेट में निकला, और निकल करके ये क्या है, ये जड़ है, ना रोता ना हंसता ना हाथ पर उछलता, किसी काम के नहीं यार, क्या है, कुछ बैठा दे, दूध पिलाओ तो नहीं पिलाओ तो पी लिया, नहीं पिला तो मत पिलाओ, कुछ नहीं, कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं, ये क्या है, आप दुखी थे। लेकिन जब ही पूर्णमासी देवी मधुमंगल उनके बेटा आता है, वो आकर बोलते है दादा दादा करता उनके पास में पलने पर जाकर, जब मधुमंगल आकर दादा दादा करता था तब हाथ उठाकर मुंह में हाथ लगाता था, सब देखते थे, बोले अब भी यही उनका हाथ उठता है, जड़ की तरह उठा, जब मधुमंगल दादा दादा कहते हैं उनको मुंह में हाथ लगाते, बोले नहीं, रोहिणी के गोद में जाकर बैठ जाता था, मेरे दादा है। रोहिणी देवी बोलते तू कैसा है, तू पहले से तेरे से छोटा ही है, तेरे से दादा के, हाँ दादा तो है ये, और क्या, मेरे बाद में आया लेकिन दादा है। अरे ये मूड कुछ बोलता नहीं, जड़ है, नहीं 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 नहीं, वेट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, दादा मेरे सखा के अपेक्षा कर रहा है। सचमुच सांडिल्य जी भी आए, उनके गणना किए, बोले ये तो साक्षात, मैं उनके सृष्टि भी नहीं गणना कर पा रहा हूं, कौन है क्या है, लेकिन इतना कहता हूं ये अति मानव है, और उनका अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, ऐसा नहीं कि जड़ है बोल नहीं सकते, सारे सबगुरु सर्वगुण समन्वित है, पर क्यों रोते नहीं, कुछ नहीं करते ना, कुछ तो रहस्य है, काल के अनुसार प्रकट होगा, ये नहीं मैं गणना कर सकता हूं, कौन ज्योतिष में कुछ गणना कर पाए उनको, वो असीम है अनंत है, कौन सीमित करे उनको। लेकिन मधुमंगल बोलता था हाँ दादा वेट कर रहा है मेरा सखा का, देखना वेट कर रहा है, एक साथ में एक्शन शुरू करेंगे इसलिए वेट कर रहा है, अभी इनएक्टिव है, एक्टिव होंगे वो, दादा आ जाए, सखा आ जाए मेरा। सचमुच जब कृष्ण प्रकट हुए उन्हीं के साथ में, दादा होते हुए भी अब अनुज के साथ ही एक साथ में, उनका सारे बाल्य लीला से शैशव से लेकर के लीला शुरू किए, शैशव लीला से शुरू किए, अग्रे भविता देवो एडवांस पार्टी में आए, बुकिंग वगैरह करने के लिए सब अड़हनसड़ी जाता ना, जो यात्रा आगरा जाता है पहले अड़हनसड़ी जाता है, रूम भूम बुकिंग ना कहा रहे क्या करें खाए पिए सब व्यवस्था करने के लिए। तो एडवांस पार्टी में आए, लेकिन जब जाने का समय हुआ प्रभास लीला में देखते हैं भगवान जाने से पहले निकल गए। ये भी एडवांस पार्टी है, क्योंकि और कहीं लीला होगा इसलिए एडवांस में जाना है। ये सेवक का गुण होता है, बिल्कुल सेवक का गुण होता है, सेव्य आने से पहले आ जाए सारे व्यवस्था करे, और सेव्य कहीं जाने के विचार करते हैं जाने से पहले चला जाए कि वहीं वहां फिर जाकर व्यवस्था करे। हमेशा एक्टिव चौकन्ना है, हरि प्रिय चिकित्सया, हरि के प्रिय करना ही जिनका केवल मात्र इच्छा है। ये इस प्रकार से चले गए, हमेशा साथ में रहे अंत लीला तक प्रभास, जदवंश नाश में भी साथ में थे। आप बोलेंगे कि जो महाभारत युद्ध हुआ इसमें तो साथ में नहीं थे, अरे तो पहले नहीं थे, लड़ाई नहीं करूंगा मेरे सब संबंधी है चले गए, जाकर के वहां लड़ाई कर शुरू कर दिए। एक भागवत कार वक्ता था व्यास को मार डाले जाकर, लड़ाई भाग लिए ऐसा नहीं, अब बोले धर्म क्षेत्र में मारूंगा नहीं, वहां भी धर्म को मार डाले जाकर के, ये भी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था, बोले यहां नहीं लड़ूंगा मैं जा रहा हूं, तुम जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूं तीर्थ करने, चले गए। अब जाकर के तीर्थ करके पहले नवीसारण में ओपनिंग करे ये व्यास को मार डाले, घास में मार डाले उसको, घास पे कर कुछ घास में बताओ। अब महाभारत युद्ध का फाइनल हुआ था नहीं तो आगे घूम फिर करके आए थे ना, अरे आके पहुंच गए थे बिल्कुल टाइम पर, अब आ करके हमला खड़ा कर दिए थे। भीम डर गया था, अर्जुन डर गए थे, भगवान ना होते और उस दिन दुर्योधन बद्ध से हुआ गदा युद्ध हो रहा था, वो बैठ कर देख रहा था, बोले हाँ मेरे स्टूडेंट है कैसे कर रहा है प्रैक्टिस भी देख रहा हूं, बिल्कुल युद्ध के फाइनल स्टेज में आ गए थे, ऐसे नहीं कि नहीं थे हमेशा थे। अरे जब कहां तीर्थ गए, 18वां दिन जब आ गए कहां गए तीर्थ में, कहीं घूम फिर के आ गए, 15 दिन में आ गए थे, 18वां दिन एंट्री होने से पहले आ गए थे। तो हमेशा रहते हैं साथ में, हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन एक बार सचमुच कुछ दिन के अलग हुए थे। हरि प्रिय चिकित्सया, हरि के प्रिय करने के लिए जिनको अपना एकमात्र स्वजन मानते हैं, उनके स्वजन के चिंता से, उनके स्वजन ही स्वजन की चिकित्सा सेवा करने के लिए एक बार अलग हुए थे, वो द्वारका से वृंदावन आए थे। जब कृष्ण बलराम एक साथ द्वारका गए थे, दोनों ही भाग करके गए थे, प्रश्रवण गिरी से एक साथ में भागे, जरासंध के शरण छोड़ बने, दोनों सब साथ साथ में, साथ साथ में किए, वहां भी द्वारका में साथ में रहे, सब कुछ किए। लेकिन द्वारका से, द्वारका में रहते हुए भी, अभी द्वारका जत्रा जा रहा है, उनके द्वारका लीला के वर्णन द्वारका में करेंगे, लेकिन ये ब्रज का लीला के बात है इसलिए कह देता हूं। द्वारका में रहते हुए भी ब्रज के इतने चिंता होता था श्री बलराम के, श्री कृष्ण के, ओ क्या कहें, शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे कभी कभी, दिन रात में भी प्रकट हो जाता था। हाँ राधे ब्रज देवी के चललिते, ऐसे करके विकल हो जाते थे, कभी रोते थे कभी हंसते थे। बलराम जी बोलते थे कृष्ण एक बार जाकर घूम आना चाहिए, मैया बाबा के दिखाना चाहिए, बाकी सब है गाय बैल सब है हमारे ब्रजवासियों के, थोड़ा और घूम आना चाहिए। कृष्ण सुन करके अग्रजे के बाद बैठ जाते थे, हाँ गर्म श्वास लेते थे, हाय भैया जाना तो चाहिए लेकिन क्या करूं कैसे जाऊं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप तो जानते हैं मैं जाऊं ब्रज में थोड़े दिन के तो जाकर आ नहीं सकता, मेरे लिए जिस ब्रज का ऐसी दुर्दशा है उन दुर्दशाग्रस्त ब्रज में मैं जाऊं, वो दो दिन जाकर वापस आ जाऊं, रिटर्न टिकट करके जाऊं, ब्रजवासी छोड़ देंगे, नहीं हो सकता। इस स्थिति में दूसरा भी कारण था, 100 साल के उनका नियम था नहीं जाऊंगा जो भी था, और भगवान ने नाना प्रकार के घर देते थे, लेकिन वो रोते थे, तुम रोता है उनके देर से, थोड़ा उनके लिए देखाने के लिए क्यों नहीं जाता। तो कृष्ण ने बोले आर्य दादा आपको तो पता है मेरी स्थिति क्या है, मैं नहीं जा सकता, ऑन बिहाफ ऑफ मी मेरे ओर से मेरे प्रतिनिधि बन करके आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, तुझे छोड़कर मैं जाऊं, मैं आपको छोड़कर रह नहीं सकता, आप मुझे छोड़कर रह नहीं सकते, आप कोई अलग जगह थोड़ी ना जाते हैं, मैं ब्रज को छोड़कर अलग हूं कहां, आप मेरे ब्रज को जाएंगे, मेरे स्वजन परिजन के पास जाएंगे, आपके वो है मेरे वही है, आप उनके पास एक बार जाइए, हो आइए। बहुत बोल बाल करके दादा को भेजे, एक एक स्वजन परिजन के लिए गिफ्ट भेजे, किनको क्या बोलना है, किनको क्या कहना है, किनको कैसे क्या संतरण, सब कृष्ण ने डिटेल बैठ करके कई दिन उनसे मंत्रणा करके बातचीत करके उनको सेटअप करके भेजे। बलराम आए, ब्रज में आए बलराम एक बार अकेले, अपने गाड़ी लेकर के आए, ताला ध्वज रथ में बैठ करके आए। जब श्री दाऊ श्री बलराम जब ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, अनेक वर्षों के बाद श्री ब्रज ब्रजत्व को प्राप्त किया, अनेक वर्षों से जहां गाय बैल सब सूखा घास खा रहे थे वो भी तपस्या कर रहे थे, सारे पेड़ पौधा वृक्ष लता सब फल फूल को त्याग दिए थे वो भी दुख कर कह रहे थे, और गोप गोपियां तो उनका किचन में मकड़ी के जाला लगा हुआ था, किचन में भी नहीं जा रहे थे, बोले किस लिए कुकिंग करे जब राम श्याम नहीं है, किसको खिलाएं, किसको क्या करें, ऐसे दुख दुर्दशा में पड़े थे। उस ब्रजदेवी वृंदावन आज हर्षित पुलकित हो उठी, क्योंकि दाऊ आ रहे हैं, अभी पहुंचे ही नहीं दूर से ही ताला ध्वज पताका दिखाई पड़ने लगा, ब्रज के तृण वृक्ष लता पुलकित हो गए, हर्षित हो गए, एक एक घास में पुष्प उगने लगा, सारे जो पेड़ जितने लताएं थे सब में फल और फूल भर आए, नित्य बसंत आ गया, दाऊ आ रहे हैं। श्री गोपिकाएं जिन्होंने कृष्ण विरह से विरहित होकर के बरसों से रो रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, उनको कितने समझाने पर भी कृष्ण आपसे अलग हो ही नहीं सकते, कृष्ण वृंदावन से बाहर कभी पैर रखते ही नहीं, आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन मनाने पर भी मानते नहीं, समझते नहीं, क्यों उनके मन में क्यों इतने दुख विरह, क्योंकि असली में वो कृष्ण के विरह के दुख नहीं था, ये था बलराम के अदर्शन, बलराम नहीं थे उनके एब्सेंस के कारण उनको दुख महसूस होता था, क्योंकि सभी कृष्ण के स्वभाव को जानते हैं ब्रजवासी, उन नटखट छलिया अगर कभी दर्शन दे भी दे उनके दर्शन पर विश्वास नहीं होता कि वो आया क्या वो भरोसा नहीं है, लेकिन जब श्री बलभद्र श्री बलराम के दर्शन हो जाता है तब उस नटखट होगा कहीं आसपास वो है क्या, वो दिखाई पड़े तो उनके अनुज तो साथ में होगा ही, अनुज उनके स्वजन है, उनको छोड़कर कभी दूर होगा ही नहीं, तो बलराम के दर्शन होने से सबका दुख मिट जाएगा ये निश्चित था। कृष्ण अगर आ भी जाते दर्शन दे भी देते तभी उनका रोना धोना नहीं बंद होता ना, वो बोलते है पता नहीं आया कि चला गया है, स्वप्न में आया कि क्या है, लेकिन बलराम के दर्शन ही उनको प्रमाणित करेगा, अच्छा बलराम है दादा है, तब तो अनुज उनका होगा, वो कहीं जाएगा, क्योंकि इस छलिया को जानते हैं, उनके स्वभाव को सब परिचित हैं, उनके नटखटपन उनके इस नटखटपन उनके जो मोहन माया इस बड़े भाई बलराम के, बलराम संतुष्ट है, बलराम निकट है, तब वो थोड़ा शांति करके बैठता है, उनके साथ रहता है, तो इससे बलराम की प्रेजेंस बलराम के दर्शन ही प्रमाण है कि कृष्ण के प्रेजेंस है, तो इसीलिए बलराम आ रहे हैं तो खुश होंगे तो कृष्ण तो होंगे ही, और ताध्वज देखता है नंदी घोष पीछे पीछे होगा, अग्रज के साथ अनुज कभी छोड़ता ही नहीं, इसी की आशा से सब खुश हो गए। सबसे पहले गुष्ट में गाय देखे धूल उड़ रहा है ताध्वज रथ का, गाय और वृषभ उनका पूछ उठ गया, कान खड़ा हो गया, हम्बा रब करते हुए दौड़ पड़े। उनके अति आत्मीय अति परिचित दाऊ आ रहे, इसलिए दौड़ पड़े। उन्होंने सारे सखाओं दौड़ पड़े, उनके दाऊ हो रहा। वो कोई दूर थोड़ी थे, जैसे मिले दौड़ करके गए ब्रज के आउटस्कर्ट में। उनको देखते ही बलराम जी ने रथ से कूद पड़े। ये कोई दूसरा तो थे नहीं, उनके परम स्वजन निजजन आत्मीय है। एक एक बैल एक एक गाय उनको सूंघ लेना चाहता था, चाट लेना चाहती थी। सारे सखाए उनको अंकमाल देना चाहते थे। कुछ सखा तो उनका हाथ पकड़ लिए, बोले दाऊ सुना कि आप बड़ी दूर द्वारका में रहते हैं, कितना दूर है? जमुना जी है वहां, इतने गाय इधर हैं? स्तोक कृष्ण पूछने लगा। बलराम जी उनकी क्या उत्तर देंगे, कैसा है हमारे ब्रज से, क्यों बहुत अच्छा है क्या? बलराम जी उनका हाथ पकड़कर बोले नहीं रे, ब्रज की समान द्वारका हो नहीं सकता, इसके वैभव वहां हो ही नहीं सकता। वहां समुद्र है लेकिन नमकीन पानी है, गो संपदा तो यह है ही नहीं, कहां वैभव है वहां? तो फिर तुम क्यों जाता हो इधर? मत जाओ, तैरने के लिए जमुना पानी क्या कम है क्या? मत जाना हूं। अब एक एक ब्रज सखाओं के भाव के अनुरूप उनको मिलना, उनको सांत्वना देना, सब पेड़ फूल पत्ते अपने पुष्प बिछा करके फल दे करके बलराम को स्वागत किए। खबर मिला कि दाऊ आ रहे हैं, बड़े बूढ़े गोप दौड़ पड़े। सखाओं तो पहले मिल लिए थे, दाऊ आ रहे हैं तो कृष्ण दर्शन से भी ज्यादा आनंदित हो गए कि वो तो होगा साथ में। ऐसे जाकर के मिले, दाऊ ने भी आज दे डिजर्व, किस के चरण छू करके किस जिस जिस प्रकार के सम्मान सबको दिए। बात्सल्य के स्रोत बड़े बड़े गोपिकाओं ने, जसोदा रोहिणी तो द्वारका में थी, जसोदा आदि गोपिकाओं ने, उन्मादी ने हो उठी थी, पगली गई थी, दौड़कर जाती, दाऊ आ रहा है, दौड़कर जाती जाके देखती, अरे दिखाई पड़ रहे दाऊ आ रहे, फिर दौड़कर वापस आती घर में। क्यों? अरे इतने दिन के बाद दाऊ घर में आ रहा है, उनके लिए ताजा माखन बनाना है, कितने पसंद करता है माखन खाने के लिए। दौड़कर जाते, इतने दिन से तो किचन डीएक्टिवेट था, जाकर माखन बनाना ताजा सजाना इसमें लग जाती, लेकिन मन नहीं भरती, इतने लेट क्यों? दौड़ जाती फिर देखने के लिए। वो तो पगली गई इनसाइड एंड आउटसाइड, किचन में आए रास्ता में दौड़े, अब कहां उनको तो इसी से पसीना उतर जाती, कहीं मन नहीं मानती मैं ये काम करूं ना उनको स्वागत करूं। अंततः माखन निकाल करके हाथ में माखन लिए लिए दौड़ पड़ी। बलराम आए, अब तो बड़े हो गए थे, उनके भी पुत्र पुत्र हो गए थे, लेकिन मां जसोदा के लिए दाऊ आज भी उनके अबोध शिशु है, गोद में लिपटा लिया उनको। राम भी मां के गोद से ही लिप चिपक गए, मां जसमती बात्सल्यमय मां जसमती के आंख से बारी धारा बहने लगा, स्तन से प्रेम पूरित स्तन श्राव होने लगा, मिट्टी भीग गया दुग्ध धारा और अश्रु धारा से। बलराम भी अभिषिक्त हो गए, ये दाऊ मिलन था। हम तो पंचामृत में अभिषेक करेंगे, लेकिन जो प्रेम अभिषेक दाऊ में जब ब्रज में प्रकट हुए दोबारा बलराम मां ने जिस प्रकार उनको अभिषेक किया मैया बाबा ने, वो था उनका प्रेम अभिषेक। उसमें कोई पंचामृत पंचागव्य नहीं था, केवल अपने स्तन से प्रेम दुग्ध धारा, आंख से प्रेम अश्रु धारा, इस दोनों से उनका अभिषेक किए थे। इस प्रकार महामिलन हुआ था। उनके लिए तो अवध शिशु थे, वहीं चिपक कर कितने बातें कह गए, कितने बातें कह गए बिना मुंह खोले, बिना मुंह खोले। ये सांकेतिक भाषा है, ये भावग्राही इस भाव को ग्रहण करते थे। ऐसे ब्रज के भाव को देख करके भगवान ने जाने के लिए मन नहीं किया। 2 महीना मधु माधव रह गए ब्रज में। श्री कृष्ण को द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में छोड़ करके ब्रज में बलराम 2 महीना रुके, रासलीला भी रचाए, रासलीला भी रचाए। राम घाट में जो लीला वही तभी किए थे। श्री बलराम जो साक्षात श्री कृष्ण के द्वितीय देह है, पंच रूप में तो उनको सेवा तो करते हैं, साक्षात बलदेव रूपे करे सहायन, सृष्टि आदि लीला चारी रूपे, चार रूप में सृष्टि आदि लीला रूप में उनका सहायता करते हैं। सर्व रूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, सही साक्षात बलराम गौर संगे नित्यानंद। वही साक्षात बलराम जो कृष्ण सेवा का आनंद ही जिनका एकमात्र जीवन के ध्येय है, कृष्ण सेवा का आनंद सर्व रूप में जो लूटता है, वही श्री गौर के रूप में नित्यानंद बनकर आया है गौर लीला में। वही निताय नित्यानंद है, वही पंच रूप में पंच रस में कोई रस बाकी नहीं गया। आप देख रहे हैं बलराम यद्यपि आगे प्रकट हुए थे बड़े भाई के रूप में, बाच्छल रथ स्वाभाविक था, मेरे छोटे भाई है कृष्ण। कई लीला में छोटे भाई के रूप में डांटते थे, उनको बताते भी थे, लेकिन क्योंकि कृष्ण की विस्तार है, प्रथम विस्तार उन्हीं की सेवा करते थे, लेकिन दास्य था उनके भाव में, उनके दासत्व सेवा करते थे। ब्रज में बाल लीला में हमेशा साथ रहे, सखा के रूप में सख्य रस था। कितने रस हो गया? 3 हो गया ना। और श्री शेष के रूप में सहस्रपण सहस्र मुख में उनके अनंत काल तक उनके गुणगान करते हैं, ये शांत भाव है। और एक ही रस रह गया, ये रस में कैसे बलराम कुछ नहीं छाड़ना छोड़ना चाहते थे, सर्वरूप सेवा करे, कंप्लीट हुआ ही नहीं। माधुरी रस भी रह गया, ये रस के लिए तो फीमेल होना पड़ेगा, ये रस को तो मेल फॉर्म में किया नहीं जा सकता, तो इसलिए बलराम भी साक्षात श्री अंग मजरी बन करके, श्रीमती राधिका के छोटी बहन बन करके माधुरी रस के भी आस्वादन किए। तो इसलिए पांचों को पांच रस में भगवान बलराम ने कृष्ण की सेवा किए। इसलिए सर्व रूपे रस आस्वादन करे बलराम, सब रूप में सर्व रस में उनका आस्वादन किए। तो इसलिए आज हम भारतवर्ष में एक बड़े पवित्र त्योहार मानते रक्षाबंधन। सारे बहनों ने अपने भाई के हाथ के कलाई में रक्षाबंधन बांध करके अपने प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट करते हैं, लेकिन पता नहीं भाई उनको कुछ रक्षा देता है कि उनसे रक्षा उनको देते हैं, पता नहीं, हु नोज, कता नहीं भाई बहन क्या है। लेकिन रक्षाबंधन का असली लक्ष्य है रक्षा प्राप्ति की इच्छा। वास्तविक हम इस बंधन से भवबंधन से रक्षा चाहते हैं, वास्तविक हमारा जो मेन इच्छा है सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक कृष्ण की सेवानंद की इच्छा करना चाहते हैं। ये सब कुछ हो संभव हो सकता है, संभव तभी घटी सकता है जब श्री बलराम के रक्षित रक्षा हमको प्राप्त होगा। श्री बलराम के श्री चरण में रक्षा बंधन करना चाहिए, उनके श्री चरण के साथ संबंध को स्थापना करना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेला तार, जन्म कुले की करीब तार, विद्या कुले की करीब तार। इस पढ़ाई लिखाई विद्या कुल इन क्या करेगा, पर बलराम के चरण में रक्षा बंधन नहीं कर पाया, उनके साथ संबंध नहीं कर पाया, तब जीवन ही बेकार है, यूजलेस है, यूजलेस है। तो इसलिए श्री बलराम आदि आचार्य बनकर के अभी तक संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भक्ति के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण सेवा करने के लिए लोगों को प्रवर्तन करते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, ये साक्षात समस्त आचार्य श्री बलराम के प्रतिनिधि हैं, उनके अंश मात्र हैं। ये सबके अंशी साक्षात बलराम है, श्री गुरु श्री बलराम है। तो इसलिए उन्हीं के साथ रक्षा की बंधन के आशा करके उनके हाथ के क्या बांधे, उनके चरण में नहीं, चरण के अग्र उनके नाखून के तेज में, चरण के धूल में भी धूल बन जाए, रक्षा के बांध नहीं पाए, पहुंच नहीं, रक्षा बांधने का आशा कर ले, यही संबंध रखूंगा इस आशा कर ले, बाकी वो खुद आकर के बंधवा डालेंगे, वो सब करवा डालेंगे, यही आशा करके बलराम के रक्षा के लिए आशा करके अगर हम रक्षा बंधन पर्व को पालन करेंगे तो रक्षा बंधन पर्व ही साक्षात कृतकृत्य होगा, उस राखी भी सफलता प्राप्त करेगा और हम ही वास्तविक रक्षा प्राप्त करेंगे और हमारे रक्षा बंधन उत्सव भी सुष्ठ रूप में घटित होगा, सृष्टि होगा। श्री भगवान बलराम आविर्भाव तिथि की, श्री राम कृष्ण भगवान की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।
परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक कथा सुनाई, पूरा तत्व भी था और लीला भी था। तो महाराज जी का हम जोर से धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत धैर्य और उत्साह से कथा का श्रवण किया। अभी 10:30 बजे अभिषेक होगा कृष्ण बलराम जी का और उसके बाद सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था रहेगी। प्रसादम इस बार कृपया नोट करें, पंजाबी बाग क्लब लॉन नंबर 2 में है। हर वर्ष बलराम जयंती में प्रसाद नत्था सिंह वाटिका में होता था, लेकिन इस वर्ष पंजाबी बाग क्लब लॉन नंबर 2 में प्रसाद है और प्रसाद में सही व्यवस्था बनी रहे इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया करके फ्री कूपन्स कलेक्ट कर लें। वो कूपन्स मंदिर में भी मिलेंगे और वहाँ पे पंजाबी बाग लॉन नंबर 2 में भी मिलेंगे, तो सब लोग कूपन भी अवश्य कलेक्ट कर लें और निश्चित रूप से पूरे सप्ताह पूरे उत्सव में भाग लीजिए। अभी 10:30 बजे अभिषेक होगा, उसके बाद भोग आरती होगी और फिर सबके लिए प्रसादम की व्यवस्था रहेगी। आज 12 बजे तक उपवास है और उपवास के बाद एकादशी फीस्ट है। तो एक बार फिर से हम महाराज का बहुत धन्यवाद करेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी ने बलराम जी का चित्र का वर्णन किया, उनके लीलाओं का वर्णन किया और बहुत सी हमें शिक्षाएं भी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव साईं महाराज जी का, हरि बोल। और आप दिल्ली से NCR दिल्ली से आए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं, विशेषकर इसके मधुमंगल प्रभु का, इसके सचिवपति प्रभु का और भी सभी भक्तों का जो रोहिणी से आए हैं, बहादुरगढ़ से आए हैं और द्वारका मंदिर से आए हैं, आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जिन भक्तों ने अपनी पादुकाएं बाहर उतारी थी वो उनको ट्रांसफर कर दिया गया है बाहर, शूज स्टॉल में रखा गया, तो आप घबराइए मत, सबके चप्पलें सुरक्षित हैं वहीं पे। हरे कृष्णा।